थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु सुनाऊंगा। प्रभु तू मेरे जीवन का सहारा है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अंतिम समय के बारे में हमें अपने दास के द्वारा से बताता है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के निकटता में होंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से प्रभु आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं और सीखना और सुनना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं आपके वचन में से सुनने और सीखने के लिए, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें ताकि हर एक जीवन आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करें। हमारी विनती है प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, उनके पापमय जीवन से प्रभु जी आप उन्हें आज़ादी दे ताकि वे स्वतंत्र होकर आपसे प्रेम करें और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए अपना जीवन जी सकें। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके अध्याय 4 में हैं। अध्याय 4 में आते ही हमने देखा कि यूहन्ना के दर्शन में दृश्य बदलकर स्वर्ग का दृश्य आ जाता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा कि वह उस खुले द्वार से जो उसने स्वर्ग में देखा ऊपर आ जाए, क्योंकि प्रभु यीशु उसे वह सब घटनाएं दिखाना चाहता था जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस पृथ्वी पर होने वाली थी। मेरे मित्रों, स्वर्ग में उसने देखा कि त्रिएक परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और चार प्राणी अर्थात आत्माएं उसकी स्तुति करते हुए कह रहे थे, पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। इसी के साथ हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 से 11 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मेरे प्रियो, यह पहला स्वर्गिक दृश्य है जिसमें हम महान आराधना को देखते हैं। कहता है जब, जब को वास्तव में होना था, जब भी, अर्थात कार्य चल रहा है। दूसरे शब्दों में स्तुति और आराधना परमेश्वर के सृजित प्राणियों का स्वर्ग में एक अविराम अभ्यास है जो अनंत काल तक चलता रहेगा। सृजित प्राणी सृजनहार की आराधना में उसके त्रियकत्व को श्रद्धा अर्पित करते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। आराधना स्वर्ग का अभ्यास है। मेरे प्रियो, आप स्वर्ग जाना क्यों चाहते हैं? लोगों का कहना है कि स्वर्ग के विषय में चर्चा करने वालों में से सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग जाने की इच्छा के पार्श्वर में एक विचार यह है कि नरक से बचने के लिए स्वर्ग जाएंगे। मैं इस विचार को अयोग्य नहीं मानता हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप स्वर्ग गए तो आप या तो मुंह के बल गिरकर या उठकर त्रिएक परमेश्वर की आराधना करेंगे, विशेष करके प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। यदि आप यहां आराधना को उबाऊ मानते हैं और प्रभु यीशु के प्रति अपने मन की भावनाएं प्रकट नहीं करते, तो आप स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? स्वर्ग में तो आपका बहुत समय आराधना में जाएगा। यहां पर लिखा है वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। कलीसियाओं के मुकुट समर्पण और आराधना में प्रभु यीशु के चरणों में अर्पित किए जाएंगे। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में उनके लिए मुकुट रखे हुए हैं। स्पष्ट कहूं तो यदि हमें मुकुट मिल भी जाए तो मेरे विचार में कुछ समय पहनने के बाद जब उनकी नई चमक चली जाएगी तब हम लज्जित होंगे। हम मुकुट पहनकर क्या कर रहे हैं? वहां तो एक ही योग्य मनुष्य है और वह है प्रभु यीशु। अतः हम अपने अपने मुकुट उसके चरणों में डाल देंगे। लिखा है तू ही ने सब वस्तुएं सृजी। मेरे प्रियो, यहां महत्वपूर्ण बात है जीवित प्राणी सिंहासन पर बैठने वाले को महिमा सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। वे उसके गुणों के कारण उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि वह जो है सो है। तथापि 24 प्राचीन उसकी आराधना उसके गुणों के कारण ही नहीं करते, परंतु उसके उस काम के लिए भी उसकी आराधना करते हैं जो उसने किया। यहां वे उसके सृजनहार होने के लिए उसकी आराधना करते हैं। लिखा है तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से भी और सृजी गई। दूसरे शब्दों में कलीसिया परमेश्वर द्वारा सृजित इस छोटी सी पृथ्वी से आकर उसकी आराधना में सहभागी होते हैं, क्योंकि उसने इस पृथ्वी को रचा है। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है जो सही है, और कलीसिया उसमें विश्वास करती है। आगे लिखा है तेरी ही इच्छा से भी और सृजी गई। परमेश्वर द्वारा इस पृथ्वी की रचना और हर एक वस्तु का ज्यों का त्यों होना परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में था। मैं न तो उसके कामों को भली भांति समझता हूं, न ही इस जगत के बारे में समझता हूं जिसमें हम रहते हैं, परंतु यह अवश्य समझता हूं कि इसकी रचना जैसी है वैसी इसलिए है कि वह ऐसा चाहता है। वही सर्वे सर्वा है, और हमें उसकी आराधना इसलिए करना है कि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैं आनंद करता हूं कि उसने इस पृथ्वी को बनाया और मुझे बनाया। वह मुझे पूरी तरह भूल सकता था, परंतु मेरे हर्ष का कारण है कि मैं उसकी योजना और उसके उद्देश्य में हूं। इसी कारण हम उसकी आराधना करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे। अध्याय 5 का विषय है मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में कलीसिया। अध्याय 5 में भी वही दृश्य चल रहा है जो अध्याय 4 में है। कलीसिया प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में है। मेरे विचार में उचित होगा कि हम जहां जा रहे हैं अर्थात स्वर्ग की जानकारी प्राप्त करें, तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। यदि आप कहीं जमीन खरीदते हैं तो पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः यदि आप स्वर्ग जा रहे हैं तो आप निश्चय ही स्वर्ग के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, और यही कारण है कि इस अध्याय को आपके लिए रुचिकर होना आवश्यक है। अध्याय 4 और 5 में हम देखते हैं कि कलीसिया विश्वासियों की देह स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, हम उसके साथ रहेंगे। अध्याय 5 का दृश्य स्वर्गिक है जहां महाक्लेश की तैयारियां हो रही है। क्योंकि कलीसिया स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है, इसलिए यह निश्चित है कि वह पृथ्वी पर महाक्लेश के समय नहीं होगी। मेरे प्रियो, अध्याय 4 का मुख्य विषय परमेश्वर का सिंहासन है। सिंह और मेमना दोनों ही प्रभु यीशु का प्रतीक है, और अध्याय 5 का मुख्य विषय है प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान मेमना है। वह परम प्रधान और उद्धारकर्ता दोनों है। वह इस पुस्तक में व्यक्त सब घटनाओं का सर्वे सर्वा है, अतः हम उसे अनदेखा ना करें। 7 मोहरों से बंद पुस्तक को हम देखते हैं। अध्याय 5 की घटनाएं अध्याय 4 की घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। यहां अध्याय को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अध्याय 4 और 5 का वृतांत एक ही है। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ध्यान दीजिए, लिखा है देखी। यूहन्ना उन घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। मुझे एक बार किसी ने लिखा कि मेरा एक आम अभ्यास यह कहना है, क्या यह अद्भुत चित्रण नहीं, या क्या यह चित्रण आपके लिए नहीं है। मुझे इसका कभी बोध नहीं हुआ कि मैं इस प्रकार की अभिव्यक्ति को काम में लेता हूं, परंतु शायद मैं ऐसा ही करता हूं। मेरे विचार में हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन में सब इंद्रियों को काम में लेना आवश्यक है, विशेष करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन में। यूहन्ना सुन रहा है और देख भी रहा है। यह एक कारण है कि मैं अपने उपदेशों के मध्य पिक्चर भी दिखाता हूं। मेरे इस अभ्यास के कारण मेरी आलोचना भी की जाती है, परंतु मैं यह मानता हूं कि हमें परमेश्वर का वचन सुनने के साथ देखना भी आवश्यक है कि धर्मशास्त्र की हमारी समझ जड़ पकड़ ले। परमेश्वर के वचन को हमारी सब इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए, यहां तक कि हमारा सूंघना और स्वाद लेना भी। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य के कुछ दृश्य ऐसे हैं जहां आपको आग और गंधक की गंध आएगी। मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जिस पर 7 मुहरें लगी हुई हैं। एक महान विचारक स्टॉफर का कहना है कि रोमी न्याय में किसी भी वसीयत पर 7 मुहरें लगाना आवश्यक था। सम्राट अगस्तुस और वेपासियन ने अपनी अपनी वसीयत पर 7 मुहरें लगाई थी। यहां रोचक बात यह तो है कि 7 मुहरें लगी हैं, परंतु बात रोमी न्याय की नहीं, या उस पुस्तक पर 7 मुहरें लगाना संयोग की बात नहीं है। मेरे प्रियो, विचारक गोडेट इस पुस्तक को नई वाचा की पुस्तक कहता है। कुछ का कहना है कि यह दंड की पुस्तक है। वाल्टर स्कॉट का कहना था कि यह पुस्तक संसार के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और सम्मति के प्रकाशन की पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हेरी आयरनसाइड कहते हैं कि यह इस संसार का अधिकार पत्र है। आपको स्मरण होगा कि जब इसराइल के संतान बंधुआई में जा रही थी, तब यिर्मयाह से कहा गया था कि वह भू संपदा खरीद कर उसका पट्टा अपने नाम करवा ले, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इसराइल पुनः स्वदेश लौटेगा। आप इसे यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय उसके 6 से 15 पद में देख सकते हैं। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी का अधिकार पत्र अर्थात पट्टा किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ में नहीं है। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अतः जब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने वह पुस्तक ली, तो वह पुस्तक अर्थात मेरा मानना है कि वह हमारे इस संसार का पट्टा है जिसमें हम वास करते हैं। उसने ही उसकी सृष्टि की और उसे छुड़ाया, और वह वास्तव में उसी का है। जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक का ज्ञान होना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। जकरिया की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। मेरे मित्रों, यह उड़ता हुआ पत्र प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक ही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस पुस्तक में 10 आज्ञाएं हैं और संसार का न्याय इन 10 आज्ञाओं के आधार पर ही किया जाएगा। इस पुस्तक के बारे में अनेक विचार प्रकट किए गए हैं, परंतु हम अधिकार से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैं जिस विचार को सबसे अधिक सुसंगत मानता हूं वह है कि यह पुस्तक इसराइल के साथ नई वाचा का पत्र है। परमेश्वर इस वाचा के बारे में बहुत अधिक चर्चा करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसके 31 और 33 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 26 और 27 पद में, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय उसके 16 पद में भी जो लिखा है वह है, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। यह यिर्मयाह के संदेश के साथ है। मेरे मित्रों, आगे वह कहता है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। इसराइल के साथ बांधी गई परमेश्वर की पुरानी वाचा मनुष्य के कामों पर आधारित थी। यह मत कर, वह मत कर, और मनुष्य दुर्बल होने के कारण सफल न हो पाया। इसका अर्थ यह नहीं है कि 10 आज्ञाओं में या मूसा की व्यवस्था में कोई कमी थी, परंतु समस्या मनुष्य के साथ थी। अदन की वाटिका में यही तो हुआ था। लोग प्रायः सोचते हैं वह फल विचित्र था या वह पेड़ ही कुछ असामान्य प्रवृत्ति का था। मेरे विचार में तो वह फल अन्य फलों के समान ही अच्छा था। समस्या उस पेड़ के फल की नहीं थी, समस्या तो उस दंपति की थी जो वहां धरती पर था। यह नई वाचा परमेश्वर के सिंहासन के सामर्थ्य पर निर्भर है, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। मेरे प्रियो, आज समस्या परमेश्वर की नहीं परंतु आपकी और मेरी है। आज चयन आपको करना है कि आप कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में। मेरे प्रियो, समय बहुत कम है, दिन बीतते चले जा रहे हैं, परंतु निर्णय आपको यथाशीघ्र लेना है कि आपका पट्टा कहाँ का है, नरक का या स्वर्ग का, परमेश्वर का या शैतान का। आज आप निर्णय लें। मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुताय से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु प्यारे प्यारे, तुम ही हो सहारा।